ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। देश के सभी 7 प्रदेशों के विभिन्न जिलों में आंधी ओलावृष्टि सहित हुई बारिश, सतर्कता बरतने की मौसम विभाग ने की अपील। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में हालिया चुनाव की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय किताबखाना द्वारा एकीकृत डिजिटल पेंशन सेवा शुरू और सऊदी अरब ने ईरान को दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। देश के सभी 7 प्रदेशों के विभिन्न जिलों में आंधी तूफान ओलावृष्टि सहित बारिश हुई है। ये जानकारी जल एवं मौसम विज्ञान विभाग ने दी है। विभाग ने आंधी और ओलावृष्टि के कारण संभावित मानवीय और भौतिक क्षति को ध्यान में रखते हुए उच्च सतर्कता अपनाने की अपील की है। संभावित क्षति को कम करने के लिए अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने और आवश्यक सावधानी बरतने का भी अनुरोध किया गया है। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार देश भर में आगामी 3 दिनों तक बादल छाये रहने के साथ बारिश, हिमपात और बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी। विभाग के प्रवक्ता विभूति पोखरेल के अनुसार वर्तमान में नेपाल में पश्चिमी निम्नचापीय प्रणाली और स्थानीय वायु का प्रभाव बना हुआ है। इस कारण आज रात और कल तक कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश के कई स्थानों पर, गंडकी, लुम्बिनी एवं कोशी प्रदेश के पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर और बागमती, मधेश एवं कोशी प्रदेश के तराई क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर बिजली, ओलावृष्टि और आंधी के साथ मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। महाशाखा के अनुसार रविवार से मौसम धीरे धीरे साफ होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने बिजली चमकने और गरजने की स्थिति में तुरंत सतर्क होने और पास के किसी सुरक्षित भवन या संरचना के भीतर शरण लेने की अपील की है। प्राधिकरण के उप सचिव राम बहादुर केसी ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों और यात्रियों से अनावश्यक यात्रा न करने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और वाहन संचालन से बचने की विशेष अपील की है। नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में हालिया निर्वाचन की समीक्षा और भावी रणनीति सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। पार्टी मुख्यालय सानेपा ललितपुर में आज आयोजित बैठक में सभापति गगन कुमार थापा द्वारा दिए गए इस्तीफे, आगामी नियमित महाधिवेशन, निर्वाचन की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। ये जानकारी कांग्रेस मुख्यालय के कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद दुलाल ने दी। बैठक में यह भी कहा गया कि संपन्न निर्वाचन में कांग्रेस को प्राप्त परिणामों को जीत और हार के क्रमिक चक्र के रूप में स्वीकार करते हुए निर्वाचन को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी को धन्यवाद दिया गया। बैठक में सभापति थापा के इस्तीफे को अस्वीकार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस विषय पर कोई निर्णय लिए बिना ही बैठक समाप्त हो गई। कार्यवाहक मुख्य सचिव दुलाल के अनुसार केंद्रीय कार्य समिति की बैठक रविवार को पुनः आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने हाल ही में संपन्न हुए चुनाव को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुरक्षा निकायों के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और सभी मतदाताओं के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी जनकपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में विभिन्न स्तरों पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों और संबंधित निकायों के योगदान की उच्च सराहना की। ये जानकारी प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार राम बहादुर रावल ने दी। साथ ही विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत सुरक्षा निकायों के प्रमुखों तथा चुनाव प्रबंधन में संलग्न अधिकारियों को बधाई देते हुए उन्होंने उनके समर्पण और जिम्मेदारी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। संघीय संसद सचिवालय ने प्रतिनिधि सभा के नवनिर्वाचित सांसदों को चैत 12 गते शपथ कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की है। सचिवालय के अनुसार सांसदों की शपथ इसी चैत 12 गते गुरुवार को दोपहर 2 बजे सिंह दरबार स्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवन के बहुउद्देशीय सभाकक्ष में होगी। शपथ ग्रहण के लिए निर्वाचन आयोग से प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के प्रमाण पत्र की मूल प्रति और प्रतिलिपि, नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि और हाल ही में खींची हुई पासपोर्ट साइज वाली 2 प्रति फोटो के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। सचिवालय ने निर्धारित समय से 2 घंटे पहले ही औपचारिक या सांस्कृतिक पहचान वाले परिधान में उपस्थित होने का आग्रह भी किया है। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यों को 12 चैत गुरुवार को शपथ दिलाने के लिए सिंह दरबार परिसर में निर्माणाधीन संसद भवन के सभाकक्ष का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। हालांकि संसद भवन का निर्माण पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, फिर भी निर्माणाधीन भवन के भीतर स्थित बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज हॉल में नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यों के शपथ ग्रहण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। संघीय संसद सचिवालय ने इसकी जानकारी दी है। सरकार ने इस्लाम धर्मावलंबियों के पर्व ईद उल फित्र के अवसर पर कल शनिवार को सार्वजनिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता आनंद काफले द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि नेपाल राजपत्र में ईद की छुट्टी का प्रावधान किया गया है और मुस्लिम आयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। विज्ञप्ति के माध्यम से देश और विदेश में रह रहे मुस्लिम समुदाय एवं नेपाली नागरिकों को इस अवसर पर शुभकामनाएं भी दी गई हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। पश्चिम एशिया क्षेत्र में विकसित हो रहे तनाव के कारण अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके और विभिन्न देशों में फंसे नेपाली नागरिक अब स्थिति कुछ सहज होने के बाद अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शुरुआत में दोहा, दुबई, जिद्दा और कुवैत शहर में अधिक समस्या देखी गई थी। वर्तमान में दोहा और दुबई में सीमित रूप में ही सही हवाई संपर्क पुनः शुरू होने के कारण वहां ट्रांजिट में फंसे सभी नेपाली अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। जिद्दा में समस्या में फंसे 52 हज यात्री 5 चैत को वापस लौट चुके हैं। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में दी। इसी प्रकार कुवैत शहर में फंसे 33 लोगों के लिए 4 चैत को सऊदी अरब का वीजा प्रबंध कर उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक समन्वय किया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर क्षेत्री पौडेल ने पश्चिम एशिया की समग्र स्थिति और नेपाली नागरिकों की सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक यूएई में एक नेपाली नागरिक की मृत्यु हुई है और 20 नेपाली नागरिक सामान्य रूप से घायल हुए हैं। इसी बीच कुछ नेपाली नागरिकों द्वारा भय या आतंक फैलाने के उद्देश्य से फोटो, वीडियो या अन्य सामग्री बनाने और साझा करने के आरोप में 7 नेपाली गिरफ्तार किए गए हैं। नेपाल के सभी 10 राजनयिक कमीशनों में हेल्पलाइन स्थापित की गई है, जहां समस्याग्रस्त नेपाली नागरिकों की जानकारी एकत्र करने और समन्वय का कार्य जारी है। ये जानकारी मंत्रालय के मध्य एशिया, पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका महाशाखा के प्रमुख रामकाजी खड़का ने दी। सर्वोच्च अदालत की वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ने कहा है कि जनता केंद्रित न्याय प्रणाली की स्थापना आवश्यक है। आज से भक्तपुर में शुरू हुए महिला कानून व्यवसायियों के 32वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में जनविश्वास बनाए रखने और संस्थागत सुधार के लिए बार और बेंच के बीच निरंतर संवाद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अदालत वर्तमान में जटिल परिस्थितियों और संकट प्रबंधन की योजनाओं से गुजर रही है, इसलिए सुशासन सुनिश्चित करने के लिए न्याय परिषद को प्रभावी बनाना और सूक्ष्म निगरानी को निरंतर जारी रखना आवश्यक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में उठने वाले सवालों के बारे में स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि नियुक्ति पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। कार्यक्रम में महान्यायाधिवक्ता सविता भंडारी ने कहा कि महिला कानून व्यवसायी केवल पेशागत भूमिका तक सीमित नहीं है बल्कि वे समाज परिवर्तन की वास्तविक संवाहक भी हैं। नेपाल बार एसोसिएशन के आयोजन में कल तक चलने वाले इस सम्मेलन में महिला कानून व्यवसायियों की भूमिका, समानुपातिक समावेशिता एवं न्यायपूर्ण समाज निर्माण में उनके योगदान पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। राष्ट्रीय किताब खाना ने एकीकृत डिजिटल पेंशन निवृत्ति भरण सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय किताबखाना ने आज यहां एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित कर इस सेवा का शुभारंभ किया, जिसके तहत पेंशन से संबंधित सभी कार्य अब डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे। राष्ट्रीय किताबखाना के महानिदेशक श्रवण कुमार पोखरेल के अनुसार अब से इस्तीफा देने वाले या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर जाने वाले कर्मचारियों को अपनी पेंशन, उपदान आदि सेवाओं के लिए राष्ट्रीय किताबखाना के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हाल के समय में नेपाल में व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाकर ठगी की घटनाएं बढ़ने के बाद नेपाल पुलिस के साइबर ब्यूरो ने आम नागरिकों से सतर्क रहने की विशेष अपील की है। ब्यूरो के अनुसार अपराधी व्हाट्सएप अकाउंट हैक करके उनके नजदीकी मित्रों व रिश्तेदारों से आर्थिक सहायता मांगने की नई शैली अपना रहे हैं। ब्यूरो के अनुसार ठग, मैं समस्या में पड़ गया हूं, तुरंत पैसा भेजो, या मेरे बैंक खाते में समस्या आ गई है, पैसा भेज नहीं पा रहा हूं, इस QR कोड में पैसा भेज दीजिए, जैसे संदेश भेजकर ठगी कर रहे हैं। इसलिए पुलिस ने अनुरोध किया है कि यदि किसी को इस प्रकार की ठगी या संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत साइबर ब्यूरो से संपर्क करें। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सऊदी अरब ने अब तक का सबसे सख्त संकेत किया है कि अगर ईरान उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करना जारी रखता है तो उसे जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा कि हमारे सब्र की एक सीमा है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके देश और उसके खाड़ी सहयोगियों के पास काफी क्षमताएं हैं जिनका इस्तेमाल वे चाहें तो कर सकते हैं। बता दें कि खाड़ी देशों के पास वाकई शक्तिशाली वायु सेनाएं हैं जिन्हें उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से बड़ी कीमत पर खरीदा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के सभी 7 प्रदेशों के विभिन्न जिलों में आंधी ओलावृष्टि सहित हुई बारिश, सतर्कता बरतने की मौसम विभाग ने की अपील। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में हालिया चुनाव की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर हुई चर्चा, राष्ट्रीय किताबखाना द्वारा एकीकृत डिजिटल पेंशन सेवा शुरू और सऊदी अरब ने ईरान को दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।